देवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण। तो श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताय और प्रभुपाद जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर आज कुछ श्रवण करने का और श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब व्यक्ति भाग्यशाली बनता है तब उसे भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और भाग्यशाली व्यक्ति तब बनता है जब उस व्यक्ति के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृत दान पुण्य इत्यादि जब एक साथ उदय होते हैं तब जीव भाग्यशाली बनता है। पर ऐसा भाग्यशाली जीव कोई इस कथा सत्र में बैठने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में बहुत ही दिव्य कथा का श्रवण करने को मिल रहा है। हालांकि मुख्य धर्म है सुनने का, पर आज हमें यहाँ पर सुनाने के लिए बैठा दिया है। खैर जो भी है, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जो भी संचारित शक्ति हो रही है उसके द्वारा हम आपको कुछ श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है और इस श्रीमद् भागवतम में कई भक्तों ने अपनी स्तुति और प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को की है। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र के द्वारा भगवान विष्णु को प्रार्थना है। कालिया नाग की पत्नी, नाग पत्नियों के द्वारा भी कई सारी स्तुतियां है। ब्रह्मा जी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी 20 श्लोक में स्तुति है। और भी कई कई भक्तों की प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में दी गई है। लेकिन आज हमें जिस प्रार्थना की चर्चा करनी है वो है महारानी कुंती की प्रार्थना। महारानी कुंती हमारे इस भारत वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट पांडु की पत्नी थी, जिनके 5 पुत्र थे जिसे पांडव कहा जाता है। तो यह पांडवों की माता महारानी कुंती की प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में दी गई है। तो उसी प्रार्थना से हम एक श्लोक यहाँ पर लिए हैं, तो इस श्लोक पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आइए इस श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। विषात महाग्ने पुरुषाद ददर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रत द्रोणी अस्त्रत च आस्मा हरे अभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना तसत् सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो द्रोणास्त्र तश्चास्म हरे अभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तच्चास्म हरे अभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोणस्य तच्चास्म हरे अभिरक्षिता सत्सभाया वनवास कृच्छत माताजी ठीक है
ईशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना
शब्दार्थ विषाद विष से महाअग्ने प्रबल अग्निकांड से पुरुष अध मनुष्य के भक्षक से दर्शनात् मल युद्ध करके असत दुष्ट की सभाया सभा से वनवास जंगल में प्रवासित कृच्छत कष्ट से मृधे मृधे युद्ध में बार बार अनेक अनेक महारथ बड़े बड़े सेना नायक अस्त्रत हथियार से द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्रत अस्त्र से च तथा आसमा था हरे हे भगवान अभिरक्षिता पूर्णतया सुरक्षित। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, हे कृष्ण आपने हमें विस्मय भोजन से महान अग्निकांड से मनुष्य भक्षकों से दुष्ट सभा से वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वस्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर घातक मुठभेड़ों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को वर्षों लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया था, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नंगी करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें नंगी होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ, इन सब कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मस्त्र छोड़ा। तब भगवान को कुरुवंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। ओम अज्ञानतिमिरंदस नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांध्रये। बहुत ही सुंदर प्रार्थना महारानी कुंती के द्वारा। इतनी सुंदर प्रार्थना कि वेदव्यास जी को इस प्रार्थना को श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्थान देना पड़ा। भागवतम के शुरुआत में ही महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना आती है और श्रीमद् भागवतम की शुरुआत जहां पर महाभारत का समाप्ति होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। महाभारत का एंड जहां पर होता है वहीं से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है और महाभारत का एंड इस प्रकार शास्त्र में आया है कि 18 दिन तक कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चला और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की झंगा टूटी और बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन मरा हुआ पड़ा है। असहाय अवस्था में बिल्कुल मरे से जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र नामक भूमि में। एक दिन जो हस्तिनापुर का राजा हुआ करता था, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हुकुम करने वाला दुर्योधन आज कुरुक्षेत्र की भूमि में कराह रहा है, कांप रहा है और अपने जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा है। एक दिन दुर्योधन के पास हजारों हजारों लाखों लाख दास दासियां, नौकर चाकर, धन संपत्ति, हाथी घोड़े इत्यादि सब कुछ था, लेकिन अधर्म के पक्ष में होते हुए वो भक्त के साथ युद्ध करने चला, इसलिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि में वो मारा गया। आज उसके आजू बाजू में हजारों करोड़ों लोग तो है, लेकिन जितने भी सैन्य, जितने भी लोग हैं, सब मरे हुए हैं। दुर्योधन की सहाय करने के लिए एक व्यक्ति भी कौरव की ओर से बचा नहीं है। सारी कौरव की सेना पांडवों के द्वारा मारी गई है और उस सेनाओं के बीच में दुर्योधन पड़ा हुआ है और कराह रहा है। और उसी वक्त महाभारत के तीन वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा वहां पर आते हैं और दुर्योधन की स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। उस वक्त अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और उस अंधेरी रात में अश्वत्थामा देख रहा है कि मेरे ही पक्ष का व्यक्ति, हमारा राजा दुर्योधन, आज कराह रहा है, तड़प रहा है। अश्वत्थामा को बहुत ही दुख लगा और अश्वत्थामा ने सोचा कि मरते मरते मैं इस दुर्योधन को खुश करूंगा, क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूंगा, मरते मरते इस दुर्योधन को मैं खुश कर दूंगा। उसी अंधेरी रात में वहां से अश्वत्थामा निकले और पांडवों के शिविर में जाकर पांचों पांडवों के मस्तक काटकर एक गोने में भरकर दुर्योधन के पास लेकर आया। अश्वत्थामा दुर्योधन को कह रहा है कि दुर्योधन मित्र, मैं पांचों पांडवों का सिर काटकर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। दुर्योधन ने पूछा कि जब तुम पांडवों का सिर काटने गए तब कृष्ण कहां थे, क्योंकि कृष्ण जब तक पांडवों के साथ है तब तक पांडवों का एक बाल भी कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जान गया हूं, तो पहले मुझे यह बताओ कि यह सिर जब तुम काटने गए तब कृष्ण कहां थे। अश्वत्थामा ने कहा, भरोसा नहीं है मुझ पर, मुझे पता था तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए पांचों पांडवों का सिर मैं काटकर गोनी में भरकर लाया हूं और तुम इसका परीक्षण करके देख लो, यह पांडवों के ही सिर है। तब दुर्योधन ने कहा, ठीक है, तो इसमें भीम का जो सिर है मुझे हाथ में दो, मैं भीम के सिर को पहचान जाऊंगा, क्योंकि भीम का जो सिर है वो वज्र से भी कठोर होगा। तब दिया गया दुर्योधन के हाथ में भीम का सिर। जैसे ही दुर्योधन ने वह सिर हाथ में लिया, वह पचक 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 करके पांचों सिर फूट गए, क्योंकि वह पांच पांडवों के सिर नहीं थे, वह पांडव अर्जुन के पांच पुत्र के वह सिर थे। तब दुर्योधन को पता चला, अरे मूर्ख, अरे पागल, यह तू पांडवों का सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर लाया है। और उस वक्त दुर्योधन बहुत ही दुखी हुआ और किसी ऋषि के द्वारा दुर्योधन को श्राप था कि जब दुर्योधन को सुख और दुख, हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब ही दुर्योधन की मृत्यु हो सकती है। तो उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अंतिम समय में सबसे पहले दुर्योधन हर्षित हुआ, क्योंकि पांडवों का सिर काटकर अश्वत्थामा लाया है, लेकिन उसे पता चला यह पांडवों का सिर नहीं है, तो पांडवों के पुत्र नन्हे मुन्ने बालकों का सिर है, तब वह बहुत ही दुखी हुआ और हर्ष और शोक दोनों एक साथ में हुए, तुरंत दुर्योधन की मृत्यु हो गई, मर गया दुर्योधन। और यहां पर सुबह उठकर जब द्रौपदी देखती है कि हमारे मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल पांच पुत्रों के सिर किसी ने काट दिए हैं, बहुत ही दुखी हुई, रोने लगी। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी ने भी हमारे पुत्र के सिर काटे हैं, आज सूर्य ढलने से पहले ही मैं उसको पकड़कर लाऊंगा, और हे द्रौपदी, तुम उस व्यक्ति के सिर के ऊपर पैर रखकर ही स्नान करोगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। स्नान करना होता है जब अपना कोई मर जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि उस अपराधी के सिर के ऊपर पैर रखकर ही तुम स्नान करोगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुरंत अर्जुन ने कृष्ण को कहा, रथ बाहर निकालो, हमें इस अपराधी को ढूंढने जाना है। कृष्ण ने रथ निकाला, अर्जुन रथ पर सवार हुए और गए अपराधी को ढूंढने के लिए और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास लाए और अश्वत्थामा बंधा हुआ है, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध दिया था रस्सी से और द्रौपदी के सामने फेंक दिया, द्रौपदी तुम इसे अपने हाथ से मार डालो। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने कहा कि हम इसे नहीं मार सकते। हमें प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों करते थे? जब जब द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया तब तब कृष्ण आए। इसका उत्तर यही है कि अपने पांच पुत्रों का वध जिसने किया है द्रौपदी के सामने है, फिर भी द्रौपदी कह रही है कि इसे नहीं मारना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं इसे मार डालो, द्रौपदी कहती है नहीं मारना है। यह है भारतीय स्त्री का हृदय। अपने पुत्रों की हत्या करने वाला सामने खड़ा है लेकिन फिर भी द्रौपदी कह रही है नहीं मारना चाहिए। सिद्धांत बता रही है अर्जुन को कि यह अश्वत्थामा आपके गुरु का पुत्र है और गुरु की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको हमें हमारा गुरु ही समझना चाहिए, इसलिए इसका वध नहीं करना है। बहुत सुंदर कथा है। भीम आए, कहने लगे इसे तुरंत मार डालो। युधिष्ठिर कहने लगे नहीं मारना है। दो पक्ष खड़ा हो गया, एक पक्ष कहता है मार डालो और एक पक्ष कहता है नहीं मारना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर राय दी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि उस व्यक्ति को मारना है और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपमान करके छोड़ दिया जाए तो अपमानित व्यक्ति एक मृत्यु के बराबर है, इसलिए तुम इस अश्वत्थामा को अपमानित कर दो तो ये मृत्यु ही है। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए, कार्टून की तरह बिल्कुल अपमानित कर दिए, और ब्रह्म तेज के कारण अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि था, वह मणि भी अर्जुन ने निकाल दिया और इस प्रकार से अपमानित कर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा चैन से नहीं बैठा। बदले की आग में अश्वत्थामा 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र का अर्थ, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जो कभी विफल नहीं होता। वह नाम लेकर छोड़ा जाता है और उस जिसका नाम लिया है उस व्यक्ति को मार कर ही लौटता है। जैसे आजकल के अणु बम टारगेट लेकर छोड़े जाते हैं और जो टारगेट है उसको विनष्ट करके ही रहते हैं। तो ऐसा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा छह ब्रह्मास्त्र छोड़े, पांच ब्रह्मास्त्र पांच पांडवों पर और एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। अश्वत्थामा जानता था यह पांच पांडवों को मारकर भी उस पांडवों के कुल में एक व्यक्ति बचेगा, वो है उत्तरा के गर्भ में। उस उत्तरा के गर्भ में भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा ताकि सारा कुल विनष्ट हो जाए। और यहां पर कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कृष्ण आए थे कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को मदद करने के लिए। अब सब कुछ हस्तिनापुर पांडवों के हाथ में आ गया, सब कुछ ठीक से कुशल हो गया और कृष्ण द्वारका जाने के लिए लौट रहे हैं। द्वारका जाने के लिए कृष्ण रथ पर सवार है और सारे पांडव, पांचों पांडव कृष्ण को विदाई करने के लिए खड़े हैं। वहां पर महारानी कुंती भी कृष्ण को विदाई देने के लिए खड़ी है। और उस वक्त अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, उत्तरा ने देखा एक गरम गरम ब्रह्मास्त्र जो मेरे पेट की ओर, मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, मेरे शिशु की हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो दौड़ते दौड़ते उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो चुके थे और द्वारका जाने के लिए निकल ही रहे थे, उतने में उत्तरा वहां पर आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, बचाओ बचाओ कृष्ण, मुझे बचाओ। कृष्ण ने पूछा क्या हो गया। उत्तरा कहने लगी, एक गरम गरम ब्रह्मास्त्र मेरी गर्भ की ओर आ रहा है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा करे कृष्ण, मेरी रक्षा करे। तब कृष्ण ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों आई, तुम्हारे पांच दादा खड़े हैं यहां पर और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय होकर लौटे हैं, इतने बल वाले हैं, तो उनके पास जाकर न जाकर मेरे पास क्यों आ गई। तब उत्तरा कहती है, नान्यम तवत अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, हे देवाधिदेव, यह जो पांच खड़े हैं यह किसी को मार सकते हैं, किसी को मार तो सकते हैं लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जिला नहीं सकते। यत्र मृत्यु परस्परम, परस्परम परस्परम में एक दूसरे को मार सकते हैं लेकिन नान्यम त्वद अभयम पश्ये, वह अभय प्रदान नहीं कर सकते, जीवन प्रदान नहीं कर सकते। जीवन प्रदान करने वाले मात्र आप ही हो कृष्ण, इसलिए कृपया करके मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। वास्तव में इस संसार में अगर कोई अभय प्रदान करने वाला है तो एकमात्र कृष्ण है, और इस संसार में कोई भी व्यक्ति अभय प्रदान नहीं कर सकता। हम देखते हैं इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, दुखी हैं और किसी ना किसी से तो डरते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अभय हो। प्रत्येक जीव को किसी ना किसी से भय है। कोई अपनी पत्नी से डरता है तो कोई स्त्री अपनी पति से डरती है, कोई अपने बॉस से डरता है, कोई अपने पड़ोसी से डरता है, कोई अपने दादा से डरता है, कोई अपने टीचर से डरता है, कोई अपने गुरु से डरता है। श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से डरते हैं, और किसी से ना डरे लेकिन मृत्यु से तो जरूर डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु से न डरता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस वक्त बता रहे थे, डरती है रूह यारो, जी भी कांपता है, मरने का नाम न लो, मरना बुरी बला है। हे जीव, हे मनुष्य, आप मरने का नाम मत लो, क्योंकि जब मैं मरने का नाम सुनता हूं तब यह रूह कांप जाती है, डर लग जाता है, दुखी हो जाता हूं जब मैं याद करता हूं कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। एक दिन यह इतना अच्छा शरीर जो चल रहा है, घूम रहा है, खा पी रहा है, उसे लकड़े के ऊपर सोकर जलना पड़ेगा, राख बन जाना पड़ेगा। जब ऐसी बातें सुनते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति डरता है, लेकिन इस डर से अभय होना चाहते हैं तो गोविंद दास जी कहते हैं, समझाते हैं अपने मन को कि हे मन, उस अभय प्रदान करने वाले गोविंद के चरणों में लग जा। भजे हु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अगर जीवन में अभय चाहते हैं, किसी से डरना नहीं चाहते, यहां तक मृत्यु से, यमराज के दूत से भी नहीं डरना चाहते हैं, तो गोविंद के चरणों में हमारा मन लगा लेना चाहिए। क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए समझाना चाहिए हमारे मन को कि अभय प्रदान करने वाले गोविंद के चरणों में लग जाए। बहुत ही सुंदर आगे कहते हैं, शीत आतप बात बरीसन इथे किया छे परती धीरे। गोविंद दास जी कहते हैं, सुख और दुख, हानि और लाभ, नुकसान और फायदा हमारे जीवन में आते रहेगा और जाते रहेगा। सुख और दुख तो आना और जाना लगा ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता में सबसे पहला उपदेश यही है, मात्रा स्पृशास्त्र कौन थे यह शीतोष्ण सुख दुखदा। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। दृष्टांत देते हैं भगवद गीता में, जैसे गर्मी के बाद ठंडी की ऋतु आती है और ठंडी के बाद गर्मी की ऋतु आती है, ठीक उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएंगे। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार सुख के बाद दुख आएंगे ही। इसलिए भक्त को चाहिए कि धीरस तत्र न मुह्यति। इसलिए जो भजन कर रहा है उसे इस दुख को लेकर हाय हाय नहीं करना है। क्या करना है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत ही सुंदर आगे लिखते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन पुत्र परिजन कहां तक हमारा साथ देगा। आज जिस पुत्र के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या निश्चित है वह पुत्र बड़ा होकर हमें रखेगा? कोई भरोसा नहीं। आज हम जवान हैं, हमें हमारी शक्ति पर भरोसा है, लेकिन कल ऐसा दिन आएगा हम बूढ़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा हमसे। और जिस धन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, गधे की तरह, बैल की तरह हम दिन और रात एक कर रहे हैं, कहां तक साथ देगा? गोविंद दास जी कहते हैं, इथे किया छे परती, नहीं देगा साथ। और जीवन बहुत कम बचा है। गोविंद दास जी कहते हैं, बहुत ही कम जीवन हमें मिला है। जैसे कमल के दल पर पानी का बूंद स्थित होता है, कब हवा आ जाए और पानी का बूंद गिर जाए, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में कब काल आ जाए और हमें मार डाले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजहु हरि पद नीति रे, इसलिए भजन कर लेना चाहिए। हमारे ब्रज में एक कवि है जिसका नाम है रसखान। रसखान जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि जीवन जो है बहुत ही क्षण भर के लिए मिला है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और ये शरीर आज सोए कल सुबह उठेगा या नहीं उठेगा कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः में जाने खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली, रटले अरि जीवा कृष्ण को नाम तू अंत समय पे हिली न हिली। हे जीवा, प्रार्थना करते हैं अपने जीवा से कि हे जीवा तू कृष्ण का नाम रट ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी क्या भरोसा, इसलिए नाम रट लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो अगर हम अभय बनना चाहते हैं तो अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री गोविंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, और हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की कथा में और उसके चरणों में लगाना चाहिए। यहाँ पर उत्तरा कह रही है नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, आपके अलावा अभय प्रदान करने वाला मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज इतने लोग मारे गए, कल 4 आतंकवादी को ठार किया गया, 500 लोगों को बॉम्ब विस्फोट में मर गए, प्रतिदिन पढ़ते इतने लोग मर गए इतने लोग मर गए। लेकिन क्या हमने कभी ऐसा सुना कि एक व्यक्ति मर गया उसे शमशान लेकर गए और शमशान में किसी व्यक्ति ने उसे जिला दिया? नहीं। लेकिन मरे हुए व्यक्ति को भी जिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण है, जिला देते हैं। ब्रह्मास्त्र जो जिस पर नाम लेकर छोड़ा जाता है उसे मारकर ही लौटता है। हम आगे चलकर देखेंगे वह मरे हुए ब्रह्मास्त्र छोड़े हुए उस घर पर भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे। तो जैसे ही उत्तरा जी ने प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में उत्तरा की जमहाई लेते ही उत्तरा के मुख से उसके गर्भ में चले गए, पर गदा और शंख से उस उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसकी रक्षा करने लगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना आगे उत्तरा करती है। उत्तरा जी कहती है कि हे कृष्ण, मैं भले मर जाऊं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो संतान पल रही है उसको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आदर्श दिखा रही है उत्तरा कि किस प्रकार माता को अपने शिशु की रक्षा करनी चाहिए। आज समाज में हम देखते हैं लोग गर्भपात करवाते हैं, काम वासना से प्रेरित होकर गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या करवाते हैं लोग। लेकिन आदर्श स्थापित कर रही है उत्तरा, कह रही है कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए। कृष्ण, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में उसके गर्भ में जाकर बिल्कुल सुदर्शन और चक्र से बिजली की तरह उस शिशु की रक्षा करने लगे, और अपने सुदर्शन से जो 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों पर छोड़ा गया था वह भी विलोप कर दिया। इस प्रकार से उत्तरा 5 पांडवों की रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उस शिशु की भी रक्षा की। और रक्षा करने के बाद अब कृष्ण द्वारका जाने के लिए लौट रहे हैं। जब कृष्ण आदेश देते हैं कि चलिए सारथी को द्वारका जाने के लिए, तब महारानी कुंती बहुत सुंदर प्रार्थना करती है, और वह प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में एज इट इज दी गई है। इतनी सुंदर प्रार्थना करती है महारानी कुंती। यह प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका जाने के लिए लौटे थे, द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए थे, अपनी 16108 रानी की याद आ गई थी कृष्ण को, लेकिन इतनी सुंदर प्रार्थना महारानी कुंती के द्वारा हुई, भगवान श्री कृष्ण जाने से नहीं गए और रुक गए हस्तिनापुर में। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को हम हमारे हृदय में रुकाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यह प्रार्थना सुननी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रार्थना महारानी कुंती करती है, कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वादमिश्वम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे कृष्ण, आप परम पुरुष पुरुषोत्तम हो मैं जानती हूं, मैं यह भी जानती हूं आप इस संसार के सभी जीवों में हो और सभी वस्तु में आप हो। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, आप अंदर भी हो बाहर भी हो सभी जगह पर, आप अपने धाम में भी हो सभी जगह पर हो मैं जानती हूं। लेकिन इस संसार में कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो आपकी उपस्थिति में भी आपको नहीं जान सकते। माया जवनी काचनम ज्ञा दोक्षजम वेयम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। हे कृष्ण, आपकी जो माया शक्ति है, भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, एक है योग माया और एक है महामाया। माया जवनी काचनम का अर्थ होता है कि योग माया के द्वारा भगवान आवृत रहते हैं और महामाया के द्वारा इस संसार में रहने वाले जीव आवृत रहते हैं। और यह माया शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही माया कभू स्वर्ग उठाए कभू नरक डुबाए। यही भगवान की माया शक्ति कभी स्वर्ग में पहुंचाती है तो कभी नरक में डुबाती है, कभी चींटी बनाती है कभी गधा बनाती है, कभी मनुष्य बनाती है तो कभी इंद्र भी बनाती है। भगवान की एक ही शक्ति मनुष्य को अलग अलग कार्य करवाती है। तो महारानी कुंती कह रही है कि जो इस माया से आवृत है, महामाया से आवृत है, वह आपको नहीं जान सकते। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरक्तया। अर्जुन, ये जो महामाया मेरी जो शक्ति है बहुत ही दुरक्ते है और इस माया को लांघना, इस माया को पार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मामे ये प्रपदंते माया मेता तरंती थे, अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है तो वह इस माया को लांघ सकता है, इस माया को पार कर सकता है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, सभी जीवों को सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करनी चाहिए। यह करने से इस माया से बच सकते हैं। तो महारानी कुंती कहती है जो माया से आवृत है वह आपको नहीं जान सकते। आप परम पुरुष हो, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अपने निज धाम से यहां पर कुछ लीला करने के लिए आते हो। लीला करने के लिए आते हो लेकिन जो माया में पड़े हुए हैं वह उसी प्रकार आपको नहीं पहचान सकते जैसे कोई अभिनेता ड्रेस पहनकर, फैंसी ड्रेस पहनकर रंगमंच पे आए तो पहचानने वाला व्यक्ति भी उसे नहीं पहचान सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, आप अपने निज धाम से यहां पर कुछ लीला करने के लिए आते हैं लेकिन जो माया में पड़े हुए हैं वह आपको नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते हैं आपको। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, देवताओं और देवताओं का राजा सुरेंद्र इंद्र भी कभी कभी धोखा खा जाता है आपको पहचानने में। हम देखते हैं कृष्ण लीला में जब गोवर्धन उठाना पड़ा और देवताओं से भी उच्च स्थान है ब्रह्मा जी का, और वह ब्रह्मा जी जिसे साक्षात कृष्ण के द्वारा ज्ञान मिला था, और ब्रह्मा जी जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, और प्रकट होते ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने सारा ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, ऐसा ब्रह्मा भी जब कृष्ण यहां पर आते हैं उसे पहचानने में धोखा खा जाता है। तो ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा भी धोखा खाते हैं, तो हम जैसे तुच्छ जीव धोखा खा जाए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबको धोखे में रहना चाहिए। आगे लीला में आया है ब्रह्मा जी के पसीने निकल गए कृष्ण को मनाने के लिए, बहुत बहुत प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, नो मीयते भ्रव पुषेत विडम्बराय गुंजा वसन परिपिच्छ सलसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्री मृदुपते पशु पंग जाय। बहुत बहुत प्रार्थना किए लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं माने। खैर यह और विषय है, लेकिन जो माया में पड़े हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। तब अपना दैन्य प्रकाश कर रही है महारानी कुंती, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम मलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्य ही स्त्रिय। हे कृष्णा, आपको तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ऋषि जान सकते हैं, मेरी जैसी तुच्छ महिला, मेरी जैसी तुच्छ स्त्री आपको कैसे जान सकती है। मैं स्त्री, हम आपके बारे में कैसे जान सकते हैं। अपना दैन्य प्रकाश कर रही हैं, तब कहती हैं कि वह सब कुछ छोड़ दीजिए, मुझे इतना पता है कि आप स्वयं कृष्ण हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। आप गोलोकवासी कृष्ण अपने निजी धाम से वसुदेव के पुत्र के रूप में इस धराधाम पर आए हो और देवकी के नंदन देवकी के पुत्र के रूप में आए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और यहां पर आप आकर आप फिर नंद बाबा के पास गए और सभी गोपों को आनंद दिए, सभी गोपियों को आनंद दिए, सभी गाय को आनंद दिए, इसलिए कहते हैं नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती और बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, नमो पंकज नाभाय, आपकी नाभि कमल पुष्प की तरह सुंदर है। नमो पंकज नेत्राय, आपकी जो चक्षु आंखें हैं वो कमल की तरह है, आपके चरण भी कमल की तरह है। तब महारानी कुंती कहती है, अब महारानी कुंती को कृष्ण ने महारानी कुंती के जीवन में जितने भी उपकार किए हैं उसकी याद आने लगी। महारानी कुंती को याद आ रहा है कि कैसी कैसी स्थिति में कृष्ण ने हमें बचाया। यथा हिषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिर सुचार्चिता। महारानी कुंती याद कर रही हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने अपनी माता देवकी को बचाया कंस के कारागृह से और मुझे भी बचाया बहुत बहुत विपत्तियों से। लेकिन महारानी कुंती कह रही है कि आपने जो कृपा मुझ पर की वह कृपा आपने अपनी मां पर भी नहीं की। देवकी मेरी भाभी, महारानी कुंती वसुदेव जी की बहन है और उस रिश्ते से देवकी जी महारानी कुंती की भाभी लगती है। महारानी कुंती कह रही है कि आपने देवकी जी से भी ज्यादा मुझ पर कृपा की है, क्योंकि कंस देवकी पर बहुत अत्याचार किया, जेल में बंद कर दिया गया और छह छह पुत्र को आंखों के सामने, देवकी के आंख के सामने मारा गया, तब तक आपने देवकी की रक्षा नहीं की। इतना दुख सहना पड़ा, लेकिन मेरे जीवन में पद पद पर विपदा, जब जब मुश्किली आई, विपत्ति आई, तब आपने प्रत्येक विपत्ति में मेरी रक्षा की। वास्तव में जो भगवान के निज भक्त होते हैं उसका भाव इस प्रकार का होता है कि भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मुझ पर ही है। भगवान के जो परिकर होते हैं उसका यह भाव होता है कि सबसे ज्यादा कृष्ण की कृपा मुझ पर है, लेकिन इस संसार में रहने वाले व्यक्ति को, हमारे जैसे बद्ध जीवों को यह भाव होता है कि कम से कम कृपा भगवान हम पर कर रहे हैं। इस दुनिया में अगर कोई दुखी है तो मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा कोई दुखी नहीं है, हमारा यह भाव होता है। कुंती जी कहती हैं कि आपने बहुत बहुत कृपा की मुझ पर, और जितनी जितनी कृपा भगवान श्री कृष्ण ने महारानी कुंती पर और उनके पुत्रों पर की, वह सारी कृपा बिल्कुल रील की तरह, सिनेमा में जैसे हम फिल्म देखते हैं वैसे रील की तरह सामने याद आ रही है। तब कहती हैं, विषयान महाग्रे पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छन। महारानी कुंती कहती हैं, आपने बड़े बड़े भय से, बड़ी बड़ी विपत्तियों से मुझे और मेरे पुत्रों की रक्षा की। कहती है विषान महाग्ने, विषान का अर्थ होता है हलाहल विष। हे कृष्ण, आपने हलाहल विष जो कौरों के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा भीम को दिया गया था, कथा इस प्रकार है कि जब कौरव, दुर्योधन और भीम जब छोटे थे, बचपन से ही दुर्योधन पांडवों के साथ वैर रखते थे, बचपन से ही प्लान बनाया करते थे कि कब हम इस पांडवों को मार डालें। तो एक दिन की बात है, दुर्योधन प्लान बनाकर भीम को पिकनिक पर लेके गए गंगा नदी के तट पर, और बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाए, और उस सुंदर स्वादिष्ट भोजन में हलाहल जहर कालकूट नाम का विष डाल दिया भीम को मारने के लिए। दुर्योधन जानते थे कि भीम को खाने का बहुत शौक है, और उसको हम खाने के लिए बुलाएंगे तो वो आएंगे जरूर। वास्तव में भीम को खाने का बहुत शौक था, और चार जन का अकेले खाते थे चार जन का भोजन अकेले भीम करते थे, लेकिन महाराज जी कहते हैं काम भी उतना करते थे हमारा क्या है, हम चार जन का भोजन तो खाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं खाते हैं ज्यादा और काम कम किया करते हैं, लेकिन भगवान को यह पसंद नहीं। आहार समतोल होना चाहिए। आज भी हम देखते हैं, हम कोई मोटर बाइक या कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि कम से कम पेट्रोल खाए और ज्यादा से ज्यादा एवरेज दे, यह कार हमें चाहिए। तो हमें भी इसी प्रकार बनना है, कम से कम खाना चाहिए, कम से कम सोना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अगर ऐसा होगा तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। तो भीम अति भोजी थे, भगवत गीता में नाम आया है अति भोजी भीम, ज्यादा खाने वाले। तो भीम को लेकर गए दुर्योधन और बहुत ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाए और भीम के सामने रखे गए, और भीम तो खाने लगे। जैसे ही खाते गए, विष अपना प्रभाव दिखाने लगा और भीम मूर्छित होकर गिर गए। वह विष कालकूट, कालकूट नाम का अर्थ, का विष का अर्थ होता है कि वह विष की गंध भी किसे मिल जाए तो वह गंध से व्यक्ति मर सकता है, ऐसा हलाहल विष भीम को खिला दिया। और जब मूर्छित हो गया भीम, तब उसे गंगा नदी में फेंक दिया। किसी को नहीं पता यह बात को, कोई नहीं जानते थे, दुर्योधन ने उसे फेंक दिया। लेकिन देखिए कृष्ण की कृपा, फेंक दिया भीम को गंगा नदी में, और वह नदी में डूबते 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 पाताल लोक में चला गया। भीम पाताल लोक में चले गए और वहां पर नाग, कई सारे नाग आए और भीम को डसने लगे। आश्चर्य की बात यह, जैसे ही नाग डसने लगे, भीम का होश उड़ता गया और वह जो बेहोश की हालत में थे होश में आते गए। सारे नाग सोच में पड़ गए, जब हम किसी को डसते हैं तब व्यक्ति मर जाता है, लेकिन यह तो जी रहा है। तो सारे नाग अपने जो राजा थे वासुकी नाग के पास गए और कहने लगे, एक आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति आया है और जैसे जैसे हम उसे डस रहे हैं वह जिंदा होते जा रहा है और उसका बल बढ़ते जा रहा है। तब वासुकी नाग ने कुछ बलशाली नाग को भेजा और कहा कि उसे बंदी बनाकर हमारे पास लेकर आओ। तब कुछ नाग गए और भीम को पकड़कर वासुकी नाग के पास लेकर आए। वासुकी नाग के जो मंत्री या उसके पास जो थे वह भीम के रिश्तेदार थे। वहां पर भीम के नाना रहते थे और भीम के नाना ने देखा कि हमारा पोता आया है यहां पर, और वासुकी नाग को कह दिया कि यह हमारा दुश्मन नहीं है, यह हमारा मेहमान है और इसका स्वागत करना है। और नाना जी ने पूछा भीम को कि बेटा इस प्रकार की हालत कैसे हो गई। तो भीम ने कहा क्या करूं, हमारे ही रिश्तेदार ने, हमारे ही सगे संबंधी ने हमारी यह हालत की है। बहुत ही एक एक बात पर सिद्धांत है, समय नहीं है। वास्तव में इस संसार में हमें अपने रिश्तेदार से जितना दुख मिलता है उतना बाहर से नहीं मिलता है। हमारे रिश्तेदार से ही हमें ज्यादा दुख मिलता है बाहर से। पाकिस्तान वाले बेचारे इतना दुख हमें नहीं दे रहे हैं जितने हमारे रिश्तेदार दे रहे हैं। तो भीम ने कहा कि हमारे रिश्तेदार ने ही हमारी यह हालत की है। नाना जी ने कहा डरो मत, सामने 8 अमृत के कुंड पड़े हैं, उस 8 अमृत का पान करो, पियो, एक एक अमृत के कुंड में जाकर उसे पियो और उसमें स्नान करो। और एक कुंड का को पीने से, एक कुंड का पानी अमृत पीने से और उसमें स्नान करने से 1000 हाथी का बल मिलेगा। तब भीम ने उस 8 कुंडों का बहुत ही भर भर के पानी पिया और स्नान किया और 8000 हाथी का बल प्राप्त कर लिए। और भीम जन्म से ही 2000 हाथी का बल रखते थे। जब भीम वायु पुत्र थे, वायु के अंश से प्रकट हुए थे और जन्म से ही 2000 हाथी का बल भीम में था। भीम के जन्म की कथा में आता है, महाभारत में वर्णन है। जब भीम का जन्म हुआ और महारानी कुंती उसे हाथ में लेकर जा रही थी, तब उन्होंने देखा सामने शेर आ गया और शेर को देखते ही भीम जो छोटा सा बच्चा हाथ में था वह हाथ से छूट गया और छूटकर एक बहुत बड़े पत्थर पर गिरा। तो जिस पत्थर पर वह छोटा सा भीम गिरा वह पत्थर चूर चूर हो गया। जन्म से ही 2000 हाथी का बल था और उस पाताल लोक में जाकर 8000 हाथी का बल, तो 10000 हाथी का बल लेकर बाहर निकला भीम। यहां पर महारानी कुंती कहती है कि जिस कालकूट विष मेरे पुत्र भीम को पिलाया गया, मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से वह विष अमृत बन गया। विष भी अमृत हो जाता है जब कृष्ण की कृपा होती है। जब कोई कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। गरल सुधा दृष्टांत देते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला और हलाहल विष को पीने के लिए शिव जी को नियुक्त किया गया। भगवान श्री रामचंद्र का जय श्री राम बोलकर भगवान शिव जी ने वह विष पिया, हलाहल विष, तो वही विष भगवान शिव के लिए अमृत बन गया। बहुत ही सुंदर उसका कंठ हो गया और उस दिन से उसका नाम नीलकंठ कह के लोग पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेकर यह पिया गया था। लेकिन अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो उसके लिए अमृत भी विष हो जाता है। उसी समुद्र मंथन में सबसे अंत में अमृत निकला और भगवान का तब एक अवतार हुआ मोहिनी, और मोहिनी स्वरूप से जब भगवान देवताओं को एक बाजू में रखे, असुरों को एक बाजू में रखे और अमृत पिला रहे थे, तब राहु और केतु दोनों देवताओं की ग्रुप में आ गए थे और विष अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते थे, असुर थे, इसलिए वह अमृत पीने के कारण भगवान ने उसका सिर काट दिया, अमृत भी विष हो गया उसके लिए। लेकिन जो भजन करते हैं उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। आप शायद इस बात पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कुछ ही साल पहले हमारे गुजरात में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में एक भक्ता हो गई जिसका नाम था मीराबाई। मीराबाई भगवान की परम भक्त थी और सब लोग उसे सताते थे, जैसे भीम को अपने ही परिवार वाले उसे सताते थे। अंत में यह निश्चय कर लिया, अब इस मीराबाई को मार देना चाहिए, इसको अगर हम जिंदा रखेंगे हमारा नाम खराब होगा, इसलिए इसे विष पिलाकर मार देना चाहिए। विष का कटोरा दिया गया मीराबाई को, लेकिन हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
लेकिन इस प्रकार भगवान का नाम लेकर वह विष पिया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, अमृत का काम कर दिया। तो महारानी कुंती याद कर रही हैं कि कालकूट नाम के विष से आपने हमारे पुत्र भीम की रक्षा की, और कहती हैं महाग्नि विषान महाग्नि महान प्रचंड अग्नि से आपने हमारी रक्षा की। एक दिन की बात है, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और कहने लगा, पिताजी हम एक महल में रह रहे हैं, कौरव और पांडव, और सबको साथ में रहना थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, इसलिए काम करते हैं पांडवों को एक बहुत ही सुंदर महल बनाकर हम उसे देंगे, ताकि वह उस महल में रहे और हम यहां पर रहें और आराम से रह सके। तब धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में कह दिए, ठीक है बेटा, पांडव के लिए महल बनाओ और मैं उसे कहूंगा, वह लोग चले जाएंगे। और दुर्योधन ने मौका देखकर महल तो बनाया, लेकिन पांडवों को मारने के लिए मोम का ऐसा महल बनाया कि एक माचिस की दियासली मारने से सारा महल जल जाए और जलने में एक मिनट भी ना लगे, ऐसा महल तैयार किया पांडवों के लिए दुर्योधन ने, ताकि पांडव और महारानी कुंती सब लोग इसमें जलकर मर जाए, महाग्नि महाअग्नि में जलकर भस्म हो जाए, ऐसा प्लान बनाया। जब यह महल बन रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की संचार शक्ति से विदुर जी वहां पर जाते थे और देखते थे किस प्रकार से यह महल बन रहा है, और विदुर जी जान गए कि यह मारने का प्लान हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपने कुछ कारीगरों से उस महल से एक बहुत बड़ी सुरंग बनवाई, जो कौरवों को और दुर्योधन को नहीं पता था, और वह सुरंग जंगल में जाकर निकलती थी। सारा महल बन गया और पांडवों को सभा में बुलाया गया और कहा गया कि अब तुम उस महल में जा सकते हो। उस वक्त महाभारत में आया है, विदुर जी म्लेच्छ भाषा का अर्थ होता है इंग्लिश में, आज से 5,500 वर्ष पूर्व इंग्लिश जानते थे विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज, ये दो ही जन इंग्लिश जानते थे। और उस वक्त विदुर जी ने कहा, बहुत ही कम शब्दों में कहा इंग्लिश में, कि जब युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जब एक चूहा अपना घर बनाता है तो उस घर के दो द्वार रखता है, बस इतना कहा, और युधिष्ठिर सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। और फिर आगे चलकर युधिष्ठिर महाराज ने उस लाक्षागृह में जाकर मीटिंग की और कहा, एक दिन यह लोग हमें जलाकर मार डालेंगे, उससे अच्छा है हम ही निकल जाए यहां से। महारानी कुंती कह रही है, अगर आपने विदुर जी के हृदय में यह प्रेरणा नहीं दी होती तो हम उस महाअग्नि में मर गए होते, भस्म हो गए होते, अगर आपकी कृपा नहीं होती। हे कृष्ण, आपकी अनंत अनंत कृपा हम पर है, आपके बहुत बहुत उपकार हम पर है। वास्तव में भगवान जितना उपकार करते हैं उतना कोई नहीं करता है, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार भगवान श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ उपकार करते हैं और उसका वर्णन कर पाना भी मुश्किल है। और आगे कहती है पुरुषाद दर्शनार्थ, जब वनवास दिया गया तो उसमें बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा, लेकिन कृष्ण आपने उससे भी हमें और हमारे पुत्र को बचा लिया। और असत सभाया, असत का अर्थ होता है बुरी संगत, बुरी सभा से, गलत सभा से आपने हमारी पुत्र वधु द्रौपदी को बचाया। बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही है माता कुंती, और सब कुछ याद आ रहा है कि आपने अनंत अनंत कृपा हम पर की। उस दुष्टों की सभा में, जिस सभा में हमारे पुत्र दुर्योधन के हाथ में बिक गए थे, यहां तक द्रौपदी को भी जीत लिया था, और उस सभा में दुष्ट दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा था कि जाओ उस द्रौपदी को यहां पर लेकर आओ और नंगी करो। श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में वर्णन है कि दो तीन चार पांच लोगों के बीच में यह बात नहीं हो रही थी। जिस सभा में द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, उस सभा में 20,000 लोग बैठे थे, और 20,000 लोगों के बीच में दुर्योधन कह रहा है कि जाओ उस द्रौपदी को लेकर आओ और उस आंखों के सामने नंगी करो, उस जंगा पर बिठाओ। लेकिन कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। दुर्योधन ने भेजा अपने भाई दुशासन को, जाओ उसे लेकर आओ। दुशासन नाम ही है दुशासन। वास्तव में द्वापर युग में, उस समय में जो ये कार्य हुआ था, ऐसा आज भी नहीं हो सकता। अपनी ही कुलवधू, अपनी ही कुलवधू को 20,000 लोगों के सामने कोई नंगी होते हुआ देख सकता है? आज का भ्रष्ट व्यक्ति भी यह कार्य नहीं कर सकता जो कार्य 5,000 वर्ष पहले कौरवों ने पांडवों के साथ किया था। दुशासन गया द्रौपदी को लेने के लिए, अजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, और दुशासन बहुत ही क्रूर की तरह घसीटते हुए, द्रौपदी के बाल खींचते हुए, घसीटते हुए उस भरी सभा में लेकर आया। और तब कर्ण भी बोला था कि पांच पांच पुरुष की पत्नी यह तो वेश्या है। द्रौपदी चिल्लाती रह गई, प्रणाम करती रह गई, हाथ जोड़ती रह गई, सबसे पहले अपने पति के पास गई, पांचों पति के पास प्रार्थना करने लगी, मुझे बचाओ, इस प्रकार से मुझे नंगी करने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया करके मुझे बचाओ। लेकिन पांच में से किसी ने भी द्रौपदी के सामने नहीं देखा। पितामह भीष्म के पास गई, पितामह भीष्म ने भी कुछ नहीं किया। धृतराष्ट्र के पास, अपने दादाजी के पास गई, लेकिन वह भी नहीं कुछ कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। और तब दुर्योधन ने आदेश दिया कि निकालो इसकी साड़ी और जल्द से जल्द मेरी जंगा पर इसे बिठाओ। द्रौपदी रो रही है, चिल्ला रही है, और उस वक्त द्रौपदी को याद आ रहा है, एक दिन व्यासदेव ने आशीर्वाद देते हुए द्रौपदी को कहा था कि बेटी, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, जब कोई सहाय करने के लिए न मिले, तब तुम अपने भाई कृष्ण को याद करना, वो कहीं भी होगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाएगा। द्रौपदी ने बहुत प्रयास किया, सभी लोगों से विनंती की, प्रार्थना की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ी रखी, लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन से कैसे वह लड़ सकती है। दुशासन खींचता गया, द्रौपदी के अपने हाथ में भी साड़ी नहीं रही। तब द्रौपदी बहुत ही दुख के साथ कह रही है कि हस्तिनापुर के लोगों, इस सभा में बैठने वाले लोग, तुम क्या जानो लाज, इज्जत और शर्म क्या होती है। दिल्ली में रहने वाले, हस्तिनापुर में रहने वाले, तुम क्या जान सकते हो इज्जत और लाज क्या होती है। अरे पानी के बीच में द्वारका में बैठने वाला मेरा भाई जानता है कि शर्म क्या होती है। तब द्रौपदी प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण द्वारकावासी, त्राही त्राही जगत पते, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।
जैसे द्रौपदी के मुख से कृष्ण नाम निकला, कृष्ण द्वारका में बैठे थे, जैसे ही कृष्ण नाम द्रौपदी के मुख से निकला, कृष्ण के सारे अंग फड़कने लगे और बिना आदेश दिए कृष्ण के हाथ में चक्र और गदा आ गया। कृष्ण को आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि चक्र तुम आओ गदा आओ, और तुरंत उसी सेकेंड कृष्ण वहां से दौड़े। गरुड़ जी ने कहा आप मेरे पर बैठ जाओ, मैं एक पंख मारूंगा वहां पर पहुंचा दूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हालांकि गरुड़ जी की गति, गरुड़ जी जिस स्पीड से चलते हैं, गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं। हम यहां पर बैठकर सोचे अमेरिका, तो गरुड़ जी अमेरिका पहुंच जाएंगे, इतनी तेज गति से गरुड़ जी चलते हैं। लेकिन कृष्ण ने सोचा गरुड़ की गति भी बहुत ही धीमी है, स्लो है, और कृष्ण के हाथ से पीताम्बर को आदेश हो गया तुम जाओ और द्रौपदी की रक्षा करो। पीताम्बर आकाश में आगे चल रहा है, पीछे कृष्ण है और पीछे गरुड़ जी दौड़ रहे हैं, तीनों जन आकाश में उड़ रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य, अद्भुत। और पीताम्बर कृष्ण से पहले वहां पर पहुंचकर द्रौपदी की राज रख ली। दुशासन खींचते रह गया, पसीना निकल गया। महाभारत में वर्णन है 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन के मुख से फेन आ गया, लेकिन फिर भी वह साड़ी खत्म नहीं हुई। दुर्योधन अपनी जांग ठोकते रह गया, क्या कर रहे हो, नंगी करो। दुशासन कर रहा है प्रभु भैया मुझे पता नहीं चल रहा है यह साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, यह स्त्री से ही कुछ साड़ी निकल रही है या फैक्ट्री है, क्या है मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। थक गया दुशासन और कोई नहीं समझ पाया कि यह कृष्ण की कृपा है। मात्र द्रौपदी को ही पता था कि कृष्ण मेरा भैया आ गया है। जब द्रौपदी की लाज बच गई और कृष्ण जब द्रौपदी से मिले, द्रौपदी अंदर से तो खुश थी लेकिन बाहर से गुस्सा दिखाई। यह प्रेम का स्वभाव होता है। द्रौपदी कृष्ण को कहने लगी भैया क्या तुम्हें पता नहीं था मुझे इस भरी सभा में नंगी करने का प्रयास किया जा रहा था। कृष्ण का पता था तो भैया तुम्हें आने में देर क्यों कर दी। कृष्ण ने कहा मैंने कहा देर की बहना, मैं तो तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुमने कहा हे कृष्ण द्वारकावासी, इसलिए मुझे यहां से पहले द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से यहां आना पड़ा, तो मैं कभी आने में देरी नहीं करता। मैं मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए देरी नहीं करता हूं। नमे भक्ता प्रणश्यति, भक्तों को की रक्षा करने के लिए भगवान कभी देरी नहीं करते हैं। नारायण कवि कहते हैं द्वे हाथन वारो सखे जन को कहां बिगार। इस सृष्टि में रहने वाले दो हाथ वाले भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है। कहते हैं द्वे हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़, नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। जब हजारों हाथ वाला किसी की रक्षा करना चाहे तो दो हाथ वाला क्या उसे बचा सकता है। हरे कृष्णा रक्षा कर ली, भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज की भी रक्षा की, भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। आगे कुंती महारानी कहती है, वनवास अकृत, वनवास में भी आपने हमारी रक्षा की, और मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र। वास्तव में भगवान जो हजार हाथ रखने वाले हैं वो सब की रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा तब करते हैं जब हम उस भगवान के संपूर्ण शरणागत होंगे। आप देखिए, तब तक कृष्ण नहीं आए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कृष्ण को नहीं पुकारा। हम भक्त भी कभी कभी यह प्रश्न हो उठता है कि कृष्ण हमारे जीवन में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण के संपूर्ण शरणागत नहीं है। हमें अभी भी हमारे पिता पर भरोसा है, या हमारे बॉस पर भरोसा है, या हमारे पति पर भरोसा है। द्रौपदी ने जब तक अपने पति पर भरोसा रखा कृष्ण नहीं आए। पितामह भीष्म पर भरोसा रखा कृष्ण नहीं आए। धृतराष्ट्र पर रखा फिर भी नहीं आए। अंत में अपनी शक्ति अजमाई द्रौपदी ने, लेकिन वह भी फेल हो गई। तब जाकर सोची कि अब कृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। तो जब हम कृष्ण के संपूर्ण शरणागत होंगे तब कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो शरणागति होनी चाहिए संपूर्ण, एक पैर भौतिक जीवन में और एक आध्यात्मिक जीवन में। हम दोनों करेंगे तो यह ऐसा करने से भगवान नहीं आएंगे। आज कई लोगों को अपने धन पर मद होता है, मेरे पास धन है, पुत्र परिजन सब कुछ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और प्रायः जिसके पास जो धनी होता है वो भजन नहीं करता है। लेकिन यह धन कुछ भी काम में नहीं आएगा। मैं अक्सर दृष्टांत दिया करता हूं कि मानो कितना भी किसी के पास धन हो, किसी के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए क्यों ना हो, लेकिन उसे जाना तो ट्रेन से ही पड़ता है। मान लो किसी को चन्नी रोड जाना है यहां से, और यहां से कोई ट्रेन में बैठे चन्नी रोड जाने के लिए, तो बोरीवली से ट्रेन फास्ट हो जाती है, बोरीवली से डायरेक्ट अंधेरी रुकती है। और पता चले बोरीवली से अंधेरी ट्रेन का रूट है 12 मिनट का, 12 मिनट में बोरीवली से अंधेरी पहुंचती है नॉन स्टॉप। और उस वक्त पता चले इस ट्रेन में टाइम बॉम्ब है और 5 मिनट में फूटने वाला है और ट्रेन रुकने वाली है 12 मिनट के बाद, और उसमें करोड़ों अरबों पति क्यों ना बैठा हो, बैंक बैलेंस में आंगड़िया में हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई बचा सकता है? पूरा जीवन अपने पुत्र का पालन करने के लिए निकाल दिया, वह पुत्र उस वक्त बचा सकता है? नहीं बचा सकता। उस वक्त अगर भजन किया है, कृष्ण का नाम लिया है, स्वल्पम प्रस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, थोड़ी भी भक्ति की है तो कृष्ण अवश्य बचाएंगे। बचाएंगे कृष्ण, और वह टाइम बॉम्ब भी फेल कर देंगे। बड़े बड़े टाइम बॉम्ब फेल करते हैं कृष्ण। कुरुक्षेत्र की भूमि में वास्तव में हमारी भाषा में बड़े बड़े टाइम बॉम्ब ही थे, बड़े बड़े बम थे। मृधे मृधे महारानी कुंती कहती है, अनेक अनेक मृधे मृधे, अनेक बड़े बड़े रथी महारथी अतिरथी थे कौरवों की सेना में, बड़े बड़े टाइम बॉम्ब थे, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से कौरवों की सेना में एक एक ऐसे महारथी थे, एक महारथी सारी कौरवों की सेना को निगल जाने वाले थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, पितामह भीष्म, यह सब को छोड़ दीजिए। कौरवों की सेना से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्ण। अकेला कर्ण समर्थ था, कर्ण अकेला कौरवों की सेना को मार सकता था, समर्थ था। कर्ण के जीवन में आया है, कर्ण धनुष विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास गया। और परशुराम जी का व्रत था कि ब्राह्मण को ही क्षमा कीजिए, ब्राह्मण को ही वह धनुष विद्या सिखाएंगे। तो परशुराम ने पूछा कि आप ब्राह्मण हो? कर्ण ने झूठ बोलकर कहा, हाँ ठीक है मैं ब्राह्मण। और परशुराम जी ने सारी विद्या कर्ण को सिखाई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया कर्ण। लेकिन एक दिन की बात है, कर्ण की गोद में सिर रखकर परशुराम जी सो रहे थे और उतने में एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर काटने लगा और काटते 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 कर्ण की जांघ से खून निकलने लगा और वह गरम गरम खून परशुराम जी को स्पर्श हुआ। परशुराम जी को जब वह खून स्पर्श हुआ, वह नींद से उठ गए और कहने लगे कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना खून जब बह रहा है तो मुझे उठाया क्यों नहीं? तब कर्ण ने कहा कि गुरुजी, आप सो रहे थे, मैं आपको कैसे उठा सकता हूं? तब परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति हो नहीं सकती, इतनी सहन शक्ति ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तुरंत परशुराम जी समझ गए यह ब्राह्मण नहीं है। परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब कर्ण ने कहा मैं सूत पुत्र हूं। तब परशुराम जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जितनी भी विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है सब विद्या तुम भूल जाओ। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी कर्ण उस कुरुक्षेत्र की भूमि में एक एक के छक्के छुड़ाता था। कर्ण के जीवन में और भी कई सारी दुर्घटना आई। कर्ण ने 5 बाण रखे थे पांडवों को मारने के लिए। कर्ण का टारगेट था उस कुरुक्षेत्र की भूमि में कि मेरे हाथ से मैं 5 पांडवों को मारूंगा। और दुर्योधन को वचन दिया था यह 5 बाणों से मैं पांडवों को मारूंगा। और यह बात महारानी कुंती को पता चल गई कृष्ण के द्वारा। महारानी कुंती गई कर्ण की शिविर में और जाकर कहने लगी, कर्ण तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुमसे दान मांगने आई हूं। और कहा कि तुमने जो पांडवों को मारने के लिए, अपने भाइयों को मारने के लिए वो 5 बाण निकाले हैं, मुझे दे दो। अगर वह नहीं लिए होते पांडवों की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन कृष्ण ने प्रेरणा करते हुए कर्ण से वो 5 बाण ले लिए। इतना ही नहीं, कर्ण के पास कवच और कुंडल था और कहा जाता है जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। और इंद्र जिसके अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, वह इंद्र ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कर्ण से भिक्षा मांगने लगे। कर्ण से कहा कि मुझे भिक्षा में तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण जानता था कि यह इंद्र है और अर्जुन की रक्षा करने के लिए, मेरी मृत्यु के लिए यह कवच और कुंडल लेने आया है। लेकिन फिर भी कर्ण ने दे दिया। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिया। इसलिए उस दिन से उसका नाम हुआ दानवीर कर्ण। इतनी इतनी दुर्घटना के बाद भी कर्ण समर्थ था पांडवों की सेना को मारने के लिए। और कर्ण ने एक स्पेशल बाण छुपा कर रखा था अर्जुन को मारने के लिए, जिसका नाम था एकग्नि। बहुत परिश्रम के बाद उसे एक बाण मिला था जो दूसरे दिन अर्जुन को निश्चित मारने वाला था। और कृष्ण को पता था एक बाण इसने छुपा कर रखा है। कृष्ण ने अर्जुन भीम के पुत्र गटरगज को उस दिन रात को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए और गटरगज के द्वारा रात्रि युद्ध हुई और बिल्कुल रात को कौरवों की सेना के वहां जाकर युद्ध करने लगा और सारी कौरवों की सेना को जलाने लगा। दुर्योधन आया और देखने लगा सारी सेना जल रही है। तुरंत दुर्योधन कर्ण के पास गया और कहा कि मित्र, वो जो एक बाण रखा है कृपया करके इसे मार दीजिए। कर्ण ने कहा यह बाण स्पेशल अर्जुन के लिए मैंने रखा है, इसे मैं अर्जुन को मारूंगा। दुर्योधन ने कहा कि अब सारी सेना आज रात को ही समाप्त हो जाएगी, कल रखकर क्या करोगे? तब कर्ण ने वो एकाग्नि बाण उस गटर गज पे मार दिया और एक बाण भी वह समाप्त हो गया। बहुत ही सुंदर एक कवि ने कहा है कि अगर परशुराम के द्वारा कर्णों को श्राप नहीं मिला होता, अगर इंद्र के द्वारा कवच और कुंडल नहीं निकाले होते, कुंती के द्वारा वह पांच बाण नहीं लिए होते और भगवान के प्रेरित के द्वारा गटरगज ने वह एकग्नि बाण फेल नहीं किया होता, तो कर्ण पांडवों की सेना को मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दिया होता। और इतना इतना होने के बाद भी कर्ण ऐसा युद्ध करता था, ऐसा युद्ध करता था। एक दिन की बात है, कर्ण का सामना अर्जुन से हो गया और कर्ण ने इतना तान कर एक अमोघ बाण छोड़ा जो अमोघ बाण अर्जुन के गर्दन को ही काटने वाला था। भगवान कृष्ण जान गए कि यह बाण हमारे भक्त अर्जुन के गले को, सिर को काटने वाला है। भगवान जान गए और भगवान ने अपने रथ को बहुत ही दबाया और जैसे ही भगवान ने रथ को दबाया, घोड़े घुटना टेक दिए, रथ आधा फुट नीचे हो गया और वो अमोघ बाण जो अर्जुन के सिर को काटने वाला था, अर्जुन के मुकुट को लेकर गिर गया। हरे कृष्णा तो ऐसे ऐसे महारथी से प्रभु हे कृष्ण आपने हमारे पुत्र की रक्षा की। अगर आप नहीं होते तो कब के ये लोग मर गए होते। आपने ऐसे ऐसे महारथी अतिरथी से हमारी रक्षा की। आगे कहती हैं कि आपने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े अस्त्र से हमारे पुत्र की रक्षा की। अब उस कौरव की सेना में सबसे बड़े योद्धा पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म समर्थ थे सबको मारने के लिए, लेकिन वह अपना परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दिखा रहे थे। तो एक दिन की बात है, दुर्योधन पितामह भीष्म की शिविर में आए और कहने लगे, पितामह भीष्म तुम पांडवों से बहुत प्रेम करते हो इसलिए तुम उसे मार नहीं रहे हो, मुझे पता है। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा और कल तुम भेज देना अपनी पत्नी को, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती। अब कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उस दिन कृष्ण भी वहां पर पहुंचे थे और कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को तुड़वा दी और पितामह भीष्म ने और एक प्रतिज्ञा की कि हे कृष्ण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए यह व्यूह रचा था इसलिए मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा, जो हाथ में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा या अर्जुन को मार दूंगा। और दूसरे दिन सुबह पितामह भीष्म पूरी स्फूर्ति के साथ अर्जुन के सामने आए और बहुत ही धमाधार युद्ध किए। ये महाभारत के युद्ध के 10वें दिन की बात है। 10 दिन तक पितामह भीष्म कौरव की सेना में सेनापति रहे, तो 10वें दिन सुबह पितामह भीष्म बहुत ही सुंदर लग रहे थे और बहुत ही धमाधार युद्ध अर्जुन के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा आज अर्जुन गया। पितामह भीष्म पूरी स्फूर्ति से, भागवतम महाभारत में वर्णन है, पितामह भीष्म अपने तर्कस से ऐसे बाण निकालते थे, इतनी स्फूर्ति से बाण निकालते थे जैसे एक अगरबत्ती आप हाथ में ले लीजिए और उसे ऐसे घुमाएंगे तो पूरा चक्र बन जाता है, ठीक उसी प्रकार पितामह भीष्म इतनी स्फूर्ति से बाण निकालते थे बिल्कुल उसके हाथ का एक चक्र बन जाता था। और अर्जुन के कितने बाण टूट गए, कितने अस्त्र टूट गए। कृष्ण ने सोचा अब कुछ करना होगा। उस 18 दिन के युद्ध में एक दिन अर्जुन को पसीना आ गया था पितामह भीष्म के सामने जब वो आए थे। कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त, वास्तव में पितामह भीष्म भगवान के विशुद्ध भक्त है, द्वादश महाजन में पितामह भीष्म का भी एक नाम है, भगवान को ठीक ठीक से जानने वाले पितामह भीष्म है। लेकिन जैसे रंगमंच पर रोल करना पड़ता है वैसे कौरव की ओर से वह एक रोल निभा रहे थे। तो भक्त थे पितामह भीष्म, और अपने भक्त का वचन सत्य रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए, लेकिन अपने भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को रखे और हाथ में चक्र उठा लिए और अपने भक्त पितामह को प्रसन्न किए। वास्तव में भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए अगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़े तो भगवान तोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अपमान होगा, मुझे मान अपमान की नहीं पड़ी है, लेकिन मेरा भक्त कभी अपमानित नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्त के प्रेम में आकर कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान वह नहीं टलने देते हैं। प्रहलाद महाराज ने कह दिया, हिरण्यकश्यप ने पूछा कहां है तेरा विष्णु, प्रहलाद महाराज ने कहा अत्र तत्र सर्वत्र, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, सभी जगह पर भगवान है, जहां पर देखूं वहां पर विष्णु है। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खंभे में है, प्रहलाद महाराज ने कहा हां यह खंभे में भी है। वास्तव में उस खंभे में नहीं थे, लेकिन अपने भक्त ने कह दिया इस खंभे में है तो है। भगवान ने दिखा दिया कि मेरा भक्त कहता है इस खंभे में भी मैं हूं, तो इस खंभे से मैं प्रकट होऊंगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव का रूप लेकर उस खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए। हरे कृष्णा तो अपने भक्तों का भगवान वचन रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, और बहुत ही कम मैंने यहाँ पर समय हो गया है, तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है महारानी कुंती के द्वारा। सब कुछ याद कर रही है भगवान, आपने पद पद पर हमारी रक्षा की, और वास्तव में भगवान आज तक वही है, भगवान बदले नहीं है। जैसे भगवान ने कुंती के पुत्र की और महारानी कुंती की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार आज भी अगर ठीक उसी प्रकार हम भक्ति करेंगे तो हमारी भी भगवान रक्षा करेंगे, उसमें कोई दोराय नहीं है। वैसे तो भगवान सभी जीवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों के परम पिता है। और हम देखते हैं एक पिता होते हैं और उसके चार पुत्र अगर हो, तो उस चार पुत्र में कोई अंधा हो, बेरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, लेकिन पिता का स्नेह सभी पुत्रों के प्रति सम होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे परम पिता है, और सभी जीवों के प्रति जो भगवान को गाली भी देते हैं भगवान उसका भी ख्याल रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियो अस्ति। लेकिन पिता के उस चार पुत्र में से कोई पिता का सेवा परायण पुत्र होता है, पिता की आज्ञा को मानने वाला पुत्र होता है, तो पिता का उसके प्रति विशेष प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहने वाला जीव अगर भगवान की विशुद्ध भक्ति करता है, भगवान के प्रति सेवा परायण होता है, तो भगवान कहते हैं कि ये भजन तितु माम भक्त्या, अगर कोई मेरा भजन करता है तो कहते हैं मई तेषु चाप्यहम, मैं उसके हृदय में रहता हूं, और अर्जुन ऐसे भक्त को मैं मेरे हृदय में बंद करके रखता हूं, ऐसे भक्तों को मैं मेरे हृदय में छिपा कर रखता हूं। तो किसी ने कहा कैसे, तो तुलसीदास जी कहते हैं अस सत मम जन्म उर्वस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे एक लोभी अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है ताकि इसको कोई चुरा न ले, देख न ले, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं, बंद करके रखते हैं ताकि कोई इसे देख न ले, और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और यह भगवान की तो प्रार्थना है ही, लेकिन भगवान के भक्त की प्रार्थना है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, शिप्रम भवंती धर्मात्मा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। क्योंकि मैं जानता हूं इस संसार में रहने वाले लोग सोचेंगे ये कृष्ण की बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह कभी कभी अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। इसलिए कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। कौनते ये प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति, हे कौनते तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो यह भगवान की और भगवान के भक्त की प्रतिज्ञा है कि भजन करने वाले का कभी नाश नहीं होता है, और भजन करने वाले के जीवन का जीवन में उसका एक बाल भी नहीं बाका होने देते। चैतन्य महाप्रभु, जो कुछ ही दिन पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि था, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, तब चांद काजी उसमें विक्षेप डालने लगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार करके कहा कि मेरे भक्त को, भजन करने वाले को, संकीर्तन आंदोलन चलाने वाले को तिल भार भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब कीर्तन करो, मैं चांद काजी को देख लूंगा। और आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को भी भक्त बना दिया। तो भजन करने वाले की भगवान रक्षा करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी है। प्रायः यहाँ पर लोग भगवान की भक्ति करते ही हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, पहली बार आए हैं, उसे प्रार्थना है कि आप भक्ति करना आरंभ कर दीजिए। और जो भक्ति कर रहे हैं, उसे प्रार्थना है कि वह द्रौपदी की तरह पूर्ण शरणागत होकर भक्ति करें। और जो पूर्ण शरणागत भक्ति कर रहे हैं, उसे प्रार्थना है कि मेरे जैसे भक्तों को आशीर्वाद दे कि हम भी इस प्रकार से भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।